हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। कुछ दिन बीत गए थे। इन बीते दिनों में अर्णव का व्यवहार धृति के लिए काफी हद तक बदल गया था, जिससे धृति की उलझनें बढ़ गई थीं। अर्णव ने धृति का बहुत ख्याल रखा था। उसके खाने पीने से लेकर दवाइयों तक सबका ध्यान खुद रखा था। जब तक धृति पूरी तरह ठीक नहीं हुई, उसके साथ वो भी छुट्टी पर रहा। इन दिनों में अर्णव ने एक बार भी धृति को अपने शब्दों या क्रियाओं से चोट नहीं पहुंचाई थी। धृति को ये सब किसी खूबसूरत ख्वाब जैसा लग रहा था। अर्णव अपनी नफरत जाहिर करने के बजाय उसका एक पति जैसे ख्याल रख रहा था। उससे अच्छे से पेश आता, प्यार से बात करता, और धृति को ये बदला हुआ अर्णव कहीं ना कहीं पसंद आने लगा था। पर अर्णव उसके लिए एक उलझी हुई पहेली बन गया था। ऐसा ही कुछ हाल अर्णव का भी था। वो अपने दिल और दिमाग के बीच बुरी तरह उलझा हुआ था। धृति के खिलाफ सारे सबूत उसके पास थे, पर उसका दिल उन सभी सबूतों को झुठला रहा था। अब अर्णव ने अपनी आंखों पर बंधी नफरत की पट्टी हटाकर धृति को अवलोकन करना शुरू कर दिया था, और जितना वो उसे करीब से जानता जा रहा था, उसकी उलझनें बढ़ती जा रही थीं। उसने ठान लिया था कि जब तक इन उलझनों को नहीं सुलझा लेता, अपने सवालों के जवाब नहीं ढूंढ लेता, वो धृति को और चोट नहीं पहुंचाएगा, और अपने इसी निश्चय पर वो टिका हुआ था। हालांकि उसे ये सब वक्त की बर्बादी भी लग रहा था, और कभी कभी वो खुद को बेवकूफ भी समझता था कि इतने सबूतों को झुठलाकर वो धृति पर भरोसा कर रहा है। पर जो उसके सामने था, जो वो देख और महसूस कर रहा था, उसे झुठलाना भी तो संभव नहीं था। जो सवाल उसके मन में उठे थे, उनका जवाब जानना भी जरूरी था। दिन ब दिन अर्णव की उलझनें बढ़ती जा रही थीं, जिन्हें सुलझाने की हर मुमकिन कोशिश वो कर रहा था, और फिलहाल धृति को अपनी नफरत और गुस्से से बचा कर रखा हुआ था, क्योंकि उसका दिल कहता था कि धृति इस नफरत और गुस्से की हकदार नहीं है। साथ ही अभी उसने धृति के लिए अपने मन में पनपी भावनाओं को भी होल्ड पर रखा हुआ था, क्योंकि जब तक वो इस उलझी गुत्थी को सुलझा कर किसी निर्णय पर नहीं पहुंच जाता, वो हद से आगे नहीं बढ़ना चाहता था। धृति के ठीक होने के बाद आज अर्णव उसके साथ ऑफिस आया था। हालांकि माधुरी ने धृति को पिक किया था, जैसे हमेशा करती थी, और अर्णव अकेला आया था। अपने केबिन में बैठा अर्णव काफी देर से बार बार बटन प्रेस करके कभी अपने और धृति के बीच मौजूद कांच की दीवार से पर्दा हटाता तो कभी उसे वापस लगाता। जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। कुछ देर तक वो यही करता रहा और खामोशी से धृति को देखता रहा, जो अपने केबिन में अपना काम कर रही थी। फिर उसने अपनी कोहनी को टेबल पर टिकाकर अपने चेहरे को अपनी हथेलियों से ढक लिया और खुद पर ही झल्ला उठा। नो नो अर्णव, क्या कर रहा है तू? अभी कुछ भी साफ नहीं हुआ है, और जब तक तुझे तेरे सभी सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, धृति के बारे में तू किसी निर्णय पर नहीं पहुंच जाता, ये पता नहीं चल जाता कि धृति निर्दोष है या दोषी, तेरी नफरत की हकदार है या प्यार की, तू उसके लिए ये सब महसूस नहीं कर सकता। इन अनकहे एहसासों को खुद पर हावी नहीं होने दे सकता। अगर धृति दोषी हुई और तेरा दिल गलत निकला, तो तुझे उससे अपने भाई की मौत का बदला लेना है, और तू अपने और अपने भाई के बीच इन एहसासों को नहीं आने दे सकता, जो तेरे इरादों को कमजोर बनाए और तुझे तेरे मकसद से भटकाएं। कंट्रोल कर खुद को अर्णव, कंट्रोल योरसेल्फ। ये अर्णव का दिमाग था, जो उसे आगाह कर रहा था कि अभी धृति के लिए उसके मन में इन एहसासों का पनपना ठीक नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ उसका दिल था, जो दिमाग की हर दलील को ठुकरा कर उसे धृति की तरफ झुकने पर मजबूर कर रहा था। दिल और दिमाग के बीच छिड़ी इस जंग को बीच में रोकते हुए अर्णव ने खुद से ही कहा, इतने दिनों से दिन रात इसके साथ रहा हूँ, इसलिए इसका सुरूर दिलो दिमाग पर हावी होने लगा है। मुझे खुद को रोकने के लिए धृति से दूरी बनानी होगी। कुछ वक्त उससे दूर रहूंगा, वो मेरी नजरों के सामने से दूर रहेगी, तो मैं ध्यान काम पर लगा सकूंगा और फिर मेरा मन शांत हो जाएगा। अर्णव ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाया। अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया और उसके लबों पर कुटिल मुस्कान तैर गई। उसने मन ही मन खुद को शाबाशी दी। फिर उसने अपने टेबल पर रखा इंटरकॉम उठाया और किसी को कॉल लगा दिया। अगले ही पल धृति के केबिन में रखा इंटरकॉम बज उठा। पहले तो धृति आवाज सुनकर चौंक गई, क्योंकि इतने दिनों में पहली बार वो बचा था। फिर उसने खुद को शांत किया और झट से फोन उठा लिया। हेलो, अभी के अभी मेरे केबिन में आओ। दूसरी तरफ से अर्णव की सख्त रौबदार आवाज आई, जिसे सुनकर धृति ने चौंकते हुए कांच की दीवार की तरफ निगाहें घुमाई, तो अर्णव की घूरती निगाहों को खुद पर टिके पाया। मुझे घूरने को नहीं कहा है, मेरे केबिन में आने को कहा है, तो एक मिनट के अंदर यहाँ पहुँचो। अर्णव ने धृति को घूरते हुए आदेश दिया, फिर चेतावनी भरी नजरों से उसे देखते हुए फोन काट दिया। धृति स्तब्ध से उसे देखती ही रह गई। कई दिनों बाद आज उसका सामना पुराने अर्णव से हुआ था और उसके इस अचानक बदले रवैये से वो हैरान थी। जैसे ही अर्णव ने दीवार को पर्दे से ढक दिया, धृति होश में लौटी और झट से अपनी चेयर से उठकर केबिन से बाहर निकल गई और अगले ही सेकंड अर्णव के केबिन का दरवाजा नॉक हो गया। कम इन, अर्णव की रौबदार आवाज सुनकर धृति थोड़ा घबरा गई, फिर उसने दरवाजा खोला और अंदर चली आई। आपने बुलाया सर, धृति ने औपचारिकता दिखाते हुए अदब से उसके आगे सर झुका लिया। मिस्टर मेहरा हमारी कंपनी के बहुत पुराने क्लाइंट हैं, जानते हो उन्हें? धृति ने उसके सवाल पर तुरंत सहमति में सर हिला दिया। जी, उनका कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने खत्म होने वाला है, जिसे रिन्यू करने की एप्लीकेशन वो पहले ही डाल चुके हैं। पर उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने से पहले मैं अब तक के उनके पुराने सभी रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, जिनकी हार्ड कॉपी रिकॉर्ड रूम में मौजूद है। 2015 से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं और तुम्हें रिकॉर्ड रूम में जाकर तब से अब तक की सभी फाइलें मुझे लाकर देनी है। जब तक ये काम नहीं हो जाता, मेरे सामने आने की जरूरत भी मत करना, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। अर्णव का आदेश और उसकी धमकी सुनकर धृति एकटक उसे देखने लगी। अर्णव ने जब देखा कि धृति जाने के बजाय उसे ही देखे जा रही है, तो उसने भौहें से कोड़कर उसे घुर्राया और गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, अब मुझे देख क्या रही हो, जाकर अपना काम करो और याद रहे कि जब तक ये काम नहीं हो जाता, तुम्हें न खाने को मिलेगा और न ही आराम करने की इजाज़त है। इसलिए जल्दी जाकर अपना काम शुरू करो। मीटिंग के बाद मुझे सारी फाइलें मेरे डेस्क पर चाहिए। गॉट इट? अर्णव का आदेश सुनकर धृति ने मायूसी से सर हिला दिया, फिर पलट कर वहाँ से जाते हुए मन ही मन बोली, मैं जानती हूँ कि फाइलें ढूंढना तो बस एक बहाना है। आप मुझे अपने साथ मीटिंग में नहीं लेकर जाना चाहते और मुझसे बदला लेने के लिए, मुझे तकलीफ पहुँचाने के लिए आप मुझे नीचे बेसमेंट में बने रिकॉर्ड रूम में भेज रहे हैं। धृति ने ठंडी आह भरी और वहाँ से चली गई। अर्णव कुछ पल वहीं बैठा केबिन के दरवाजे को घूरता रहा, फिर मीटिंग के लिए निकल गया। इस महीने का अंत था और नया महीना शुरू होने वाला था। अर्णव की मीटिंग जो सुबह हुई थी वो लगातार चलती ही रही। हर डिपार्टमेंट से बीते महीने की रिपोर्ट लेना, उस पर डिस्कशन करना, आने वाले महीने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, योजना बनाना, इन्हीं सब में लगभग पूरा दिन बीत गया। खाने का मौका तो किसी को नहीं मिला आज, और इतने टेंशन में किसी को खाना याद भी नहीं रहा। हाँ, लंच ब्रेक में उन्हें 10 मिनट का ब्रेक जरूर मिला था, पर उसमें भी सबके लिए वही कॉफी और स्नैक्स मंगवाए गए थे। कॉन्फ्रेंस रूम से कोई बाहर ही नहीं गया।
माधुरी ने लंच में धृति को मैसेज कर दिया था कि आज वह लंच में नहीं आ सकेगी, तो खुद से लंच कर ले। पर बेचारी धृति को तो अर्णव फरमान सुनाकर गया था कि जब तक सारी फाइलें नहीं मिल जातीं, उसे खाने की इजाज़त नहीं है। उसका बस चलता तो सांस तक लेने से मना कर देता। धृति सुबह से उस बड़े से बेसमेंट में भटक रही थी। वहाँ इतनी सारी फाइलें थीं कि धृति का सारा दिन अर्णव के आदेश को पूरा करने में निकल गया। सुबह रिकॉर्ड रूम में घुसी तो न उसे खाने पीने का होश रहा और न ही फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं इस बात की सुध रही। शाम होते होते बड़ी मुश्किल से धृति ने सब फाइलें ढूंढ ही ली, पर इस चक्कर में वो पूरी धूल मिट्टी से सन गई थी। सारा दिन भूखी प्यासी काम में लगी रही और काम पूरा होते होते उसका बदन थकान से चूर हो गया था। फाइलें ढूंढना काफी मुश्किल काम रहा उसके लिए। हाथ में चोट भी लग गई थी। एक बार ऊपर से फाइल निकालते हुए स्टूल से गिर भी गई थी, जिससे उसकी बांह बुरी तरह दर्द करने लगी थी। जैसे तैसे धृति ने अपना काम पूरा किया और जब उन फाइलों के ढेर को लेकर बाहर जाने के लिए गेट खोलने लगी तो वो खुल ही नहीं रहा था। गेट को खोलते न देखकर धृति घबरा गई। उसने फाइलों को साइड में रखा और नॉब घुमाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, पर तब भी दरवाजा नहीं खुला। धृति ने दरवाजे को कंधे से धक्का देकर खोलने की कोशिश करने लगी, साथ ही अंदर से आवाज देकर मदद के लिए किसी को बुलाने लगी। वो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही थी कि दरवाजा खुले और वो बाहर जा सके, पर ढीठ दरवाजा शायद जाम हो गया था, इसलिए खुलने को तैयार नहीं था। और यहाँ बेसमेंट में जल्दी से कोई आता नहीं था, तो भला कौन उसकी आवाज सुनकर उसकी मदद की गुहार लगाने पर आकर दरवाजा खोलकर उसे वहां से निकालता। फोन में नेटवर्क नहीं थे कि मदद के लिए किसी को बुला पाती या माधुरी को बता पाती कि वो यहाँ फंसी हुई है। धृति अंदर फंस गई थी और उसे अब आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। डर से उसकी हालत खराब हो रही थी। दूसरी तरफ सुबह से लगातार चलती मीटिंग 8 बजे खत्म हुई। तब तक बाकी स्टाफ जा चुका था और मीटिंग खत्म होते ही बाकी लोग भी जल्दी जल्दी अपना सामान समेट कर घर के लिए निकल गए। माधुरी ने मीटिंग में देर होते देखकर धृति को मैसेज कर दिया था कि वो आज अकेली घर चली जाए। फिर भी जाने से पहले उसने एक बार धृति का केबिन चेक किया और जब धृति वहाँ नहीं दिखी तो घर के लिए निकल गई। कबीर और बाकी सब भी चले गए। अर्णव भी अपना सामान पैक करके घर के लिए निकल गया। सबसे ऑफिस से जाते ही गार्ड ने मेन पावर स्विच ऑफ किया और फिर ऑफिस बंद करके वो भी चला गया और धृति उस रिकॉर्ड रूम में अंधेरे में बंद बस आवाज़ देकर मदद की गुहार लगाती रही।